من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العلي العظيم Chairman Imam Khomeini Memorial Trust آقای لطفی صاحب Chairman نگران کانسل آقای محقق صاحب شیخ بشیر صاحب President باقریہ Dr. منور صاحب Doctors Volunteers السلام علیکم باقریہ کے اس اینول ڈے کی مناسبت سے تبریک پیش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں میں اپنی سپیچ شروع کرنے سے پہلے جس طریقے سے ہمارے باقریہ والوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز میں ایک باقریہ کے عزیز ساتھی کی فوٹو دکھایا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے شاید ان کا نام انہوں نے مسٹر احمد بتایا میں چاہتا ہوں آپ سبھی اس کی روح کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ مع سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں کون ہم سے جدا ہو اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں پہ بھی بیٹھے رہو یا بقول قرآن مجید تم کہیں پہ بھی چھپ جاؤ اگرچہ ایسی سخت اور مضبوط ترین جگہ ہو جو پہاڑ کو کھود کے بنایا گیا ہو موت وہاں پہ بھی پہنچے گی آپ نے دیکھا 2003 میں صدام اتنی بڑی کنکریٹ سٹرکچر بنا کے بیٹھا رہا جب موت آنی تھی وہاں پہ بھی آیا یعنی موت سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے تو ہمیں جتنی بھی مختصر سی زندگی ملی ہے جتنا ہمیں سمے ملا ہے کوشش کریں اس مختصر سی زندگی میں سوسائٹی کو قوم کو لوگوں کو کچھ نہ کچھ سروس دے سکے اور یہی چیزیں یاد رہتی ہیں یہی چیزیں آپ کے جانے کے بعد بھی ایک تاریخ کا حصہ بن کے ہمیشہ رہتی ہیں میں چاہتا ہوں جتنے بھی ہمیں سمے ملے وقت ملے ٹھیک ہے ہماری فیملیز ہیں اپنی ڈیوٹیز ہیں ان سارے آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں فرائض ہیں ان میں سے کچھ وقت نکال کے میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 24 آورز اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں قوم کے لیے شاید یہ بہت ہی مشکل ہو لیکن کچھ سمے یقیناً آپ نکالیں اور یہی سمے ہماری زندگی کا بہترین لمحہ ہوگا ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے کمال یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کریں اور سوسائٹی میں ان لوگوں کے لیے کچھ کریں جن کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے
آپ سبھی ایجوکیٹڈ ہو, آپ سبھی ویل انفارم ہو, آپ جانتے ہیں سوسائٹی کی کیا پرابلمس ہیں, سوسائٹی میں کون کون سے ایشوز ہیں, اور ان ایشوز میں ان پرابلمس کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں, جس نے بھی ایک جان بچائی ہو کسی بھی حالت میں, موت سے, تباہ ہونے سے, ختم ہونے سے, مرجھا جانے سے, ایک زندگی بچایا ہو, گویا اس نے ساری انسانیت اور بشریت کو بچایا. یعنی اگر آپ نے ایک زندگی کو بچایا تو 7 ارب آبادی کو بچایا. یہ قرآن ہے, یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا, ایگزیجریشنز نہیں کر رہا ہے, یہ آپ کو بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ ایک زندگی کی کتنی امپورٹنس ہے. ہمارے نظروں میں جس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, قرآن ہمیں, خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے, خدا کا رسول ہمیں بتانا چاہتا ہے, جو زندگی تمہیں دیا ہے وہ زندگی اگر ساری کائنات, ساری انسانیت اور بشریت مل کے بھی اس زندگی کو وجود میں لانے کی کوشش کریں, اب بتائیے لا سکتا ہے؟ سائنس اتنا کچھ ترقی کر چکا ہے, ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ چکا ہے, کیا کر سکے؟ ایک روبوٹ ہی بنا سکے, بحث ایک مشین بنا سکے جس میں کوئی ایموشنز نہیں, میموری کارڈ سے ڈالا, چپ سے ڈالا, اسی چپس کے ڈائریکشنز پہ میموری میں جو کچھ اس کے اندر بڑا ہے اسی حساب سے وہ چلنے لگے گا. یعنی ساری دنیا کے جتنے بھی برینز ہیں, جتنی بھی دماغیں ہیں, جتنی بھی صلاحیتیں ہیں, اگر ایک آئنسٹن نہیں, 1000 آئنسٹن, 1,00,000 آئنسٹن بھی جمع ہو جائیں, ایک انسان کو وجود میں نہیں لا سکتا ہے, ایک ہیومن بینگ کو خلق نہیں کر سکتا ہے, کریٹ نہیں کر سکتا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے, خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے, خدا کا رسول آپ سے کیا کہہ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہے گا ایک انسان کو بچا لیا, سمجھ میں ساری انسانیت کو, سارے انسانوں کو بچا لیا, کیسے, یہ کیا چیز بتانے جا رہا قرآن ہمیں؟ تو بھی سورہ, اگر تمہیں شک ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے, لے آؤ اس کی مثال کا کوئی حصہ لے آؤ اور ایک دوسرے کو اس چیز کو لانے میں سپورٹ کرو, مدد بھی کرو. یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ عام آدمی کا کتاب نہیں ہے. اور اسی کتاب میں کہا گیا من احیا نفسا فکانما احیا الناس جميعا, جس نے ایک نفس, ایک جان کو, ایک زندگی کو زندہ کیا. تھوڑا سا ہمیں پتہ چلا کہ ایک زندگی کی کتنی اہمیت ہے. اس دنیا میں, اس کائنات میں جو کچھ بھی ریسورسز ہیں, جتنے بھی برینز ہیں, جتنے بھی لیبورٹریز ہیں, سارے چیزوں کو جمع کر کے, اکٹھا کر کے ایک کریچرز کو ہم بنانے کی کوشش کریں, نہیں کر سکتے. تو بدقسمتی یہ ہے ہمیں اس کا اہمیت نہیں ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے, اس کا علم نہیں ہے. اسی لیے ایک نہیں, دو نہیں, 1000 نہیں, لاکھوں انسانوں سے, کوئی توپ سے, کوئی تلوار سے, کسی اور ذریعے سے, کسی کا حق چھین کے किसी को दबा के, किसी को कुचल के, किसी को तड़पा के, अगर हमें थोड़ा सा भी अहमियत होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए जो आपका काम है, ये सिर्फ बाकरिया का नहीं है, जो भी इंसान इंसान को बचाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से कर लेता है, आप खुद अंदाजा करें क्या आप इतनी कितनी बड़ी काम करने जा रहे हैं। इसलिए खुदा हर चीज कैलकुलेटेड है। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी एक्शंस होता है, वो कैलकुलेटेड है, हिसाब किताब है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे ये खुद ब खुद पैदा हुआ है, ये खुद ब खुद वजूद में आया है। इसीलिए ये सारी दुनिया, ये सारा बशर आज तड़प रहा है, सिसक रहा है, बलक रहा है जिंदगी के लिए। आज हर कोई भीख मांगता जा रहा है, हर कोई कत्ल, मार दार, दहशत, आतंक से खौफ खाए है। हर किसी को कहीं ना कहीं सहारा और उम्मीद की नजर जहां भी दिखाई देता है उसी तरफ भागे जा रहा है। और आपके पास बेहतरीन उम्मीद है, बेहतरीन सहारा है। हम कोशिश करें, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना के भेजा है ताकि तुम सारी इंसानियत पे गवाह रहो, विटनेस बन जाओ। कैसे बनेंगे हम विटनेस? हमारे गुड इंटेंशन से और अच्छे एक्शन से, खालिस नियत से और अमल सालेह से हम दुनिया को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं जो भी फितरत इंसानी को बचाने का काम करने वाला है वो बेहतरीन उम्मत है। और उस खैर उम्मत में हम और आप भी शामिल हैं। इसलिए ना सोचें अगर यहां पे आपसे कोई डोनेशंस के लिए कहे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तो आप सोचेंगे बहुत ज्यादा हम दे रहे हैं, बहुत कुछ हमसे लिया जा रहा है। अगर आपको कहा गया कि 1 घंटा 2 घंटा यहां पे सर्विस दे दें, एक संडे आपको दे दें, स्पेशली डॉक्टर्स से, पैरामेडिकल वालों से संडे दे दें, या संडे को किसी जगह कैंप रखें, वहां पे थोड़ा सा मदद करें, तो हम बहुत कुछ दे रहे हैं। यानी हम बहुत कुछ ले रहे हैं अपने लिए। हम एक इंसान को जिंदा करके, एक इंसान को जिंदगी देके सारी इंसान इंसानियत और इस कायनात पे एहसान करने जा रहे हैं। इसलिए खुदा रा कोशिश करें कि इस लाइन में जो आज तक आप लोगों ने कंट्रीब्यूशंस दी है, मत सोचे कि ये रायगान जाएगा। यहां मेजोरिटी मुस्लिम्स है। अगर आप इस्लाम पे भी यकीन नहीं रखते हैं, कम से कम खुदा पे एतिकाद नहीं रखते हैं, लेकिन इंसान अपने जैसे इंसानों की मदद पे आप यकीन रखते होंगे, किसी को अच्छे और भले काम करने के लिए तो यकीन रखते होंगे। जरूरी नहीं है कि आप 100% मेरे सारे वजूद से, मेरे सारी सोच से, सारी ओपिनियन से आप एग्री करें, लेकिन अगर बाकरिया कोई एक अच्छा सा काम कर लेता है, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी के नाम से आप उसे मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें, तआवुन करें। और इंशाल्लाह अगर हम इसी तरीके से बढ़ते रहे, कोशिश करते रहे, तो बारहा मैं आपसे कह चुका हूं, हम इस रोई जमीन पे हमें पैदा किया गया, वजूद में लाया गया है इस रोई जमीन पे लीड करने के लिए, इमामत करने के लिए, इस रोई जमीन को सही तरीके से कानून फितरत पे चलाने के लिए। वो तभी हो सकता है जब थोड़ा सा हम मेहनत करें, थोड़ी सी कोशिश करें। यानी खुदा ने सब कुछ हमारे अंदर दे रखा, वसखर लकुम वजअल लकुम वखलक लकुम, कहते सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तस्खीर करके तुम्हारे अंदर दे रखा है, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वजअल लकुम, और जो भी वजूद में लाया गया वो तुम्हारे लिए है। कैसे लाया हमारे लिए सारा चीजें? हम तो अभी कुछ भी नहीं है, हम तो अपने वजूद के भी कायल नहीं है। हम तो सोचते हैं हमारा वजूद ही बेकार है, हम बेकार खलक किए गए, हमें सिर्फ बनाया गया है खाएं पिए, बहुत कमाल हुआ गवर्नमेंट जॉब करें, बहुत कमाल हुआ कुछ प्रॉपर्टी बनाए, इससे ज्यादा हमारी और कहीं सोच नहीं है। तो जो कुछ भी इस रोई जमीन में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स के अंदर वजूद में लाया गया है, हम उसे जाया कर रहे हैं। वैसा ही है, इतने बड़े मकान आपको दे दी गई है और इस मकान में सारी फैसिलिटीज जो भी आपको चाहिए दिया गया है, और इसके बाद आपको कहें तुम इसे इस्तेमाल करो, तुम इसे यूज कर लो अपने लिए और अपने जैसे इंसानों के लिए इस्तेमाल करो, और हम क्या करेंगे? किचन में जाएंगे, खाना खाएंगे, बेडरूम में जाके सोएंगे, बाथरूम में जाके खाली करेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर में और इसमें मौजूद सारी चीजों का यही तीन चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर कुछ और बचा है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हम करेंगे। इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर के अंदर बाकी चीजें जो खुदा ने बना दी है, वजूद में लाया गया है, प्रोवाइड की गई है, सारा बेकार जा रहा है, वो जाया हो रहा है। और यही चीजें आपके साथ है। ये मिसाल आपको छोटे से मकान से लेकर इस बड़ी यूनिवर्स तक है। आप कोशिश करें, न सिर्फ आप कोशिश करें, अपने बच्चों के अंदर भी ये चीजें डाल दें। आप बताएं कि तुम सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर, इस मामूली से स्ट्रक्चर के अंदर, इस मामूली से गांव के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस स्टेट के अंदर रहने के लिए नहीं बनाया गया। وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ, इस रोए जमीन में और इस आसमान में जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए। हम आके अटक गए यहां पे, इसलिए मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो कुछ भी इस कायनात में है, इस यूनिवर्स में है, उसमें से ज्यादा को इस्तेमाल करें। मैं एक लेक्चर देख रहा था, बड़ा एक अजीब इंटरेस्टिंग लेक्चर, आयतुल्लाह जवादी आमली का। मैं एक जुमला आपको सुनाता हूँ, मैं पूरा लेक्चर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि खोपड़ी से उतरने वाली बात ही नहीं है। कहते हैं वो इल्म, वो नॉलेज जो आपको इस नेचर के वजूद से और इस नेचर को क्रिएट करने वाले के जात से रोशनास करे, वो इल्म दीन है, वो इस्लामी इल्म है। और ये भी याद रखे, जरूरी नहीं है कि वो इल्म किसी, वो नॉलेज किसी मुसलमान के जरिए आपको पहुंचे, ये
نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, غلط فہمی نہیں کر لینا, بعد میں یہاں سے آگے جا کے کہوں گے کہ کربلائی نے بیان کیا. کتنے ضروری نہیں ہے وہ علم کسی مسلمان کے ذریعے آپ تک پہنچے اور اس نے پیدا کیا ہوا, یہ اس کا سوچ اور اوپینین ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ہی وجود سے نکلا, یعنی ایک غیر مسلم کے ذریعے ایسا نالج آپ کو پہنچے, ایسا علم آپ کے پاس پہنچے جس سے آپ کو اس نیچر سے اور اس نیچر کے کریٹر سے نزدیک کرے, روشناس کرائے. وہ علم اسلامی ہے اگرچہ وہ آئنسٹین کرے, اگرچہ وہ نیوٹن کرے. آپ دیکھیں کیا ہے, یعنی وہ علم جس سے آپ کو اس کائنات کے وجود سے اور اس کائنات کے خالق سے نزدیک کرے. ضروری کہ آپ کے مجتہد آپ کے مراجع, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آیت اللہ جوادی عملی ہے, بعد میں آپ غلط فہمی پیدا ہو جائیں گے, میں آپ کو فارسی بھی پڑھ دیتا ہوں. علمی کی بواقعیت آفرینش توسط خداوند, دقت کنند, علم اسلامی است حتی اگر توسط مسلمانان تولید نشده باشد و منشأ غیر مسلمان داشته باشد. کہتا ہے کسی غیر مسلم نے آئنسٹین نے نکالا, نیوٹن نے نکالا, رائٹ برادرز نے نکالے, کوئی بھی علم, کوئی بھی نالج, کوئی بھی تھیوری. یعنی ہمیں اس دنیا میں, یعنی ہمیں اس دنیا میں یہاں کے لیے ایک چھوٹے سے محلے کے لیے, ایک چھوٹے سے فیملی کو چلانے کے لیے, اس کا پیٹ بھرنے کے لیے, اس کے لیے گھر بار بنانے کے لیے, یا خدا ہم سے کوئی اور چیزیں چاہتا ہے؟ ہمارا وجود اس سے بھی بڑی چیزوں کے لیے ہے. اور یقیناً آپ کا وجود بقول قرآن لتکونوا شہداء علی الناس, ساری انسانیت پہ ہے, یہاں نہیں ہے مسلمانوں پہ, ایک سیکشن پہ, ساری انسانیت پہ. اور کوشش کریں ہم اپنے اس رول کو نبھائیں. ابھی باقی ہے کہ یہاں پہ جو پاور پریزنٹیشنز تھے انہوں نے آپ سے سجیشنز مانگے, ہم بہت ہی کنجوسی کرتے ہیں سجیشنز دینے میں. میرے باقی سے بھی گزارش یہی ہے, لاسٹ ایئر سجیشنز دیتے آپ کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز میں کافی خامیاں ہیں. اب میں کچھ خامیوں کی طرف آپ کا توجہ دلاؤں گا. میں چاہتا تھا آپ اس پاور پریزنٹیشنز کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں. انہوں نے آپ کو دکھایا 21,000 ہم نے پیشنٹس ٹریٹ کیے, پھر اس کے بعد کہا 8,000 ہم نے پیشنٹس ٹریٹ کیے. اس سے اچھا تھا کہ یہ چارٹس بنا لیتے رائٹ آف انسپشن سے لے کر ٹل ڈیٹ, ایئر وائز دکھاتے ہیں کہ ہر سال کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے او پی ڈی میں اور ہر سال کتنے پیشنٹس کو کیمپس میں ٹریٹ کیا ہے, کتنے میڈیسن کس سال میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. یہ تو بارہ ہم ان کے دیکھ چکے ہیں, پمفلیٹس میں بھی دیکھ چکے ہیں, وہی چیزیں ہم پھر انہوں نے ریپیٹس کی ہیں. دوسرا, لاسٹ ایئر یہاں سے بہت سارے لوگوں نے ریکمنڈیشنز دی تھی, آپ نے ریکمنڈیشنز کو ریفلیکٹ نہیں کیا اور یہ نہیں بتایا کہ اس ریکمنڈیشنز کا کیا ہوا. وہ سارا ریکمنڈیشنز اٹھا کے ڈسٹ بن میں چلا گیا کہ کچھ آپ لوگوں نے امپلیمنٹس بھی کیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو ریکمنڈیشنز دیتا ہے وہ صرف اس کان سے سنے جاتے ہیں اور اس کان سے باہر ہوتی ہے. یا آپ میں سے اگر کوئی نوٹ کر رہا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کوئی نوٹ کر رہا ہے, نوٹ اگر کر رہا ہے تو وہ نوٹ کیا ہوا چیز آپ کے ایگزیکٹو باڈی میں اس پہ ڈسکشنز ہو کے امپلیمنٹس بھی ہوتی ہے اور آپ دیتے ہیں اتنے ریکمنڈیشنز آئے اس میں سے یہ پوائنٹس اس سال ہم نے اٹھائے ہیں. اس میں سے ایک پوائنٹ جو مجھے یاد ہے
with the malnutrition. Or especially women folk, man. Last year jo yahan pe issue utha tha. Aapke zaban mein, doctoron ke zaban mein anemia hai shayad. Agar main galat nahi bol raha hoon. Kyunki hamare yahan pe khoon ki kami bahut zyada aur ye issue yahan pe utha tha mere khayal mein shayad kisi doctor ne hi uthaya tha. Agar main galat nahi kar raha hoon, doctor Inayat tha. लेकिन यहाँ पे कभी नहीं बताया आप लोगों ने उस रिकमेंडेशन का क्या किया. अभी भी कुछ रिकमेंडेशन आए, मैं आपको बताऊंगा. मैं चाहता हूँ ये रिकमेंडेशन भी आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट हो और उसमें आप बताएं कितने रिकमेंडेशन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है. अगर नहीं हुआ है तो उसका थोड़ा सा रीजन भी दे दें. यानी यही चीज आपके शुरू से 2007 से लेकर अभी तक यही चीज बार बार रिपीट ना हो. दूसरा, आप लोगों ने यहाँ पे लेबोरेटरी के बारे में दिया है. ये अकाउंट्स, ये जो बैंक अकाउंट है, आपने लेबोरेटरी का एक अकाउंट दिया है और यहाँ जर्नल एक बैंक अकाउंट दिया है. जिस बैंक अकाउंट में आपने जर्नल में दिया है 2,07,000 और लेबोरेटरी में आपने दिया है 4,27,000. अलग अलग अकाउंट्स है. अकाउंट से क्यों नहीं है?
लास्ट ईयर ये हुआ था सर कि अकाउंट्स को कलर कर दें, तो क्योंकि ये जो है एनजीओ के नाम से चल रहा है बाकरिया, वो प्रॉफिटेबल बनता है, तो इसलिए हमने कलर नहीं किया था. तो इसीलिए अलग अलग अकाउंट चल रहा है. एक कॉपरेटिव बैंक में चल रहा है बकरिया क्लिनिकल लेबोरेटरी का, और बकरिया हेल्थ केयर के लिए जेंट के बैंक में चल रहा है. अलग अलग अकाउंट.
लेकिन आपको जब जर्नल आप इनकम दिखाएंगे ओवरऑल बकरिया का, तो उस बकरिया के इनकम में आपके इस लेबोरेटरी के इनकम को भी शामिल करना पड़ेगा. अदरवाइज आपका ये जो जर्नल इनकम है वो इनकम्प्लीट है. बाकी मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा. एक चीज मैं आपसे कहूंगा, बाकी ऐसे यकीनन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो. अभी डॉक्टर विलायत साहब ने कहा, यानी जो कुछ भी हेपेटाइटिस बी में किया गया है, हुआ है, वो बाकरिया के जरिए ही हुआ है. लेकिन अगर मैंने गलत नहीं सुना है, इन्होंने जो क्वेश्चनर्स दिया था, उस क्वेश्चनर्स में जो आप लोगों को वापस मिला है, मैक्सिमम उसमें इग्नोरेंट है. शायद मैं अगर गलत नहीं हूं, इसका मतलब है जो चीज हमने सोसाइटी को अवेयर करने की कोशिश किया, एजुकेट करने की कोशिश किया, शेयर करने की कोशिश की, वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा है. ये अभी आपके टाउन की बातें हैं, मैं दूर की बातें नहीं कर रहा हूं. और ये सारा डाटा साफ के है. इसलिए कोशिश करें, कहीं पे अगर हमसे कोताही रह गया है, कमी रह गया है इस अवेयरनेस में, इस इंफॉर्मेशन में, उन चीजों को आप सुधारें. ताकि इतना कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े. मैं नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो यकीनन ये तो झूठ होगा. हुआ है, लेकिन जिस चीज का हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट शायद नहीं आ रहा है. आपके क्वेश्चनर्स के अभी पूरी तरह से जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक हमारी सोसाइटी इन चीजों के बारे में अवेयर है. मेरे आपसे गुजारिश यही है कि इन चीजों को थोड़ा सा एसेस और एनालिस करें, ताकि जो चीज हम खर्चा करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट आए. आपके इस अकाउंट में एक चीज मुझे बहुत खराब लगा, वो यह है कि आपके एनुअल डे पे आप 30,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं. इतना एक्सपेंसिव ना बना है. शायद खाने का ही होगा, बाकी गाड़ी आने जाने के लिए किराया तो नहीं देते होंगे. 30,000 खाने का ही होगा।
300 रुपए किलो है सर बीज।
वॉलंटियर्स हैं, कोशिश करें इसको कम करें। मेरा अपना सजेशन से हो सकता है आप मेजोरिटी एग्री ना करें तो जरूरी नहीं है कि उसे हम इम्प्लीमेंट करें। मेजोरिटी अगर यही चाहता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज मुझे नहीं लगता है। डोनेशंस यकीनन आप दे दें, इसका मतलब आप ज्यादा खिलाएंगे तो आप अच्छी डोनेशंस दे देंगे, कम खिलाएं तो डोनेशंस कम होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर मेजोरिटी उसी सोच का है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज्यादा इसमें आपको नहीं बोलूंगा। अभी जो पॉइंट्स हाजी अली साहब ने बोला, डॉक्टर रजा साहब ने, रहनुमा साहब ने, सज्जाद साहब, डॉक्टर विलायत साहब और शेख साहब ने, पॉइंट्स जिया साहब ने, मैं इनका मशहूर हूँ कि इन्होंने कहा कि आपके दो मीट्स को हम ऑन एयर करेंगे और वो भी फ्री। तो मुझे उम्मीद है इसी तरीके से कुछ बंदे उठेंगे, कहेंगे खाना हम दे देंगे बगैर किसी पैसे के, खुदा करे ऐसे। हाँ, अभी ये चीजें हमारे यहाँ पे बहुत कम है। एक चीज जो यहाँ पे नासिर साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूँ उसमें, एक फायदा ये है यानी हम कंपोनेंट्स बनाए। किसी को अगर हम कहें खाना आप दे दें, आखिर में हम कहें भाई आज का खाना उस साहब ने दे दिया है, हमें खाने का पैसा भी आएगा, उस साहब का नाम भी होगा और खर्चा भी हमें कम होगा। सेम इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिफिटिंग पे यहाँ पे इतना खर्चा किया, एक बंदे से हम कहें, यहाँ से कुछ बंदों को जो वॉलेंटरली, वो कहेंगे हम इलेक्ट्रिफिटिंग जितने भी इस पे एक्सपेंडिचर्स होते हैं हम दे देंगे। ऑफिस फर्निशिंग पे, या अभी आप लोगों ने लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, कुछ डोनर्स आते हैं और कोई गलत चीज नहीं है। ये कुरान है, कुरान कहता है सदकात छुपा कर दें अच्छा है, लेकिन अगर कोई इससे लोगों को आयान करना चाहे इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे एक दूसरे को इनकरेज मिलता है। हमारे यहां सोसाइटी में अभी वो चीज नहीं है, आपको यहां से बाहर हर जगह है। किसी को हम कहेंगे वो कहेगा स्कूल के टॉयलेट ब्लॉक्स हम बनाएंगे, स्कूल का फर्नीचर मैं दे दूंगा, स्कूल के 3 क्लासरूम मैं बनाऊंगा। इसी तरीके से यहाँ पे है, अभी यहाँ पे ऑप्थल्मोलॉजी के लिए सामान ला रहे हैं, लेबोरेटरी के लिए सामान ला रहे हैं, डेंटल के लिए सामान ला रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे भाई डेंटल के जितने भी सामान है हम दे देंगे, लेकिन आप यहाँ पे छोटा सा प्लेट लगाए कि भाई डोनेटेड बाई, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। इसी तरीके से आई के ऑप्थल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, कोई हजरत होगा कहेगा मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा बोर्ड्स लगाए। और ये चीजें हमें करने की जरूरत है, हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे सोसाइटी में ये चीज राइज नहीं है, कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पे। इसीलिए कुछ अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है, अपना ना खुश मैना बिजली फिटिंग बस बल्ब चुकी बाखिर साहब नस्पेरा केलो ची खुर खुरे ना यून स्कूल, ये दुनिया को बता रहा है। हमारे यहाँ पे है ये सोच, लेकिन ये गलत है। आप देखेंगे यहां से बाहर जाएंगे फेंस लगाया होगा, उस फेन पे लिखा होता है डोनेटेड बाय, मैटिंग्स दिए हैं लिखा होता है डोनेटेड बाय। और ये आप इराक में जाएंगे, ईरान में भी जाएंगे, कालीन पे लिखा होता है, कालीन देते हैं कालीन पे लिखा होता है खैर हजरत का नाम। स्ट्रक्चर का कुछ पोर्शन बनाते हैं, वहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है कि साहब ने डोनेट किया। मस्जिद बनी होती है और मस्जिद पे लिखा होता है खैर हजरत का नाम। वहां आम हो चुका है, इसलिए कोई शर्मिंदगी नहीं आती। हमारे यहाँ पे शर्मिंदगी है और हम एक दूसरे पे फिक्र करते हैं या वाकस जी बस बस, ये चीजें हमें थोड़ा सा सोसाइटी से निकालने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ हजरात कर सकते हैं, और ये अगर जिसने भी शुरू किया, याद रखें जिसने भी शुरू किया, इसके बाद जितने लोग शुरू करेंगे उन सारे शुरू करने वालों का सवाब उस आदमी को मुफ्त में मिलेगा बगैर मेहनत के। यानी बाकरिया का जिसने भी ये सजेशंस दिया कि बाकरिया में डॉक्टर्स इस तरीके का सर्विस दे देंगे, जब तक बाकरिया चलेगा उस आदमी को जिसने ये आइडिया दिया है, काम कुछ नहीं किया है, अभी जिसने सब बैठे आराम से बैठ, किसने आइडिया दिया? अल आमाल बिन नियत, अभी शेख साहब आपको बता गए, इखलास के साथ नीयत थी इसका, और इसी नीयत के साथ इसने आपको आइडिया दिया, और आपने उस आइडिया को अमलन बना के दिखा दिया, और आज जो कुछ भी चल रहा है उसमें से एक हिस्सा इसको मिलता है। और ये प्रैक्टिस है आज की दुनिया में, जानते हो उसका नाम क्या है? रॉयल्टी, पेटेंट, पेटेंट करा के उसका पैसे मुफ्त में लेते हैं, रॉयल्टी। फिल्म बना लेते हैं, फिल्म की रॉयल्टी है, गाना गा लेते हैं, गाने की रॉयल्टी है, किसी चीज को वजूद में लाते हैं उसकी रॉयल्टी है। यानी ये जो कुरान आपको बता रहा है, इस्लाम आपको बता रहा है, आज प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं, और मॉडर्न सोसाइटी में ये चीजें चल रहा है, राइज है, कोई गलत चीज नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि वधू है स्पेशल चीज आपके यहाँ पे होगा। आप में से जिसने भी शुरू किया, अभी कोई हजरत अगर तीन आदमी कहेंगे कि हम ये जितने भी डेंटल सेक्शंस के इक्विपमेंट्स हम दे देंगे, उस डेंटल सेक्शन के रूम के वहां पे छोटा सा बोर्ड बनाए, इसके बाद जितने भी लोग इस टाइप के काम करेंगे उन हजरत के नाम होगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम कर पाएंगे। अभी आपके सजेशंस में बाकी कोई खास चीज नहीं है, सारे इलाके के हेपेटाइटिस बी और सभी चाहते हैं करबलाई साहब चेयरमैन बने हैं, तो ये सारे चीजें हल हो जाए, ऐसा भी नहीं है, हमारे भी लिमिटेशंस है। यकीनन ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, और मैं जानता हूं कि हमारी सोसाइटी में गैर महसूस तरीके से ये फैल रहा है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर विलायत को एक चीज की यकीन दहानी दिलाऊंगा, हम लेह वालों की कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी फिल्म में हम लेह वालों से कम भी नहीं रहेंगे। इनका मुझे आज भी याद है, 7 साल पहले इन्होंने कहा था कि हमने हर फैमिली के मेडिकल कार्ड्स बनाए, आज आप लेह में जाके ढूंढेंगे किसी का कार्ड नहीं मिलता। हमारे लेह की बहुत सारी चीजें शोशा होते हैं, और इस शोशे की मैं आपको दूसरा मिसाल दे दूं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई चाहती है हमारी लद्दाख रीजन में, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है सोलर पावर की, मीटिंग में इन्होंने इतना आर्ग्यूमेंट किया है कि हम अपनी जमीन को नहीं दे देंगे, हम अपनी जमीन को क्लासरूम नहीं बनाना चाहते हैं, हम अपनी जमीनों को ग्रीन करना चाहते हैं, प्लांटेशन लगाना चाहते हैं, दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट्स दिए। और जब हमने एमएनआरई जिस एजेंसी के थ्रू करना चाहती है एलएनटी, उनका जो कंट्री लेवल पे एडवाइजर है वो मेजर जनरल मोहम्मद अमीन नायक साहब है, ये वो आदमी है मैंने आपको कहा ना जिसने भी आइडिया दिया, जब तक वो चीज है तब तक रहेगा। ये वो आदमी है जिसने पहली बार जोजिला टनल का इनिशियल सर्वे रिपोर्ट दिया, 5 पेज का, आज भी हमारे पास है, ये 2005-06 की बात है। और इस आदमी ने कहा था जेड मोड, हमें कंसेप्शन में भी नहीं था कि जेड मोड पे टनल है, उसने कहा था 5 किलोमीटर जेड मोड पे टनल, और 13 किलोमीटर से आपका बाल ताल से सुख नाले के बीच में टनल की जरूरत है और ये 2-way tunnel होगा, इनिशियल सर्वे रिपोर्ट इसने दी है। और आज अगर 12,000 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है इस टनल के लिए और कल ये टनल बनेगा तो इस आदमी का नाम हमेशा रहेगा। आज ये आदमी एलएनटी में है जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसने कहा कर भाई साहब हम आपके यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेह वाले नहीं मान रहे, कहते हैं जी हमने इसको ग्लास रूम नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, वो नहीं बनाना, हमने नहीं देना। और हमारे कुछ लोगों को भी इन्होंने मिस फील किया था। लेह वाले नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी एक फोबिया है, लेह वाले नहीं कर रहे तो गलत होगा, हमें भी नहीं करना चाहिए। हमने कहा अमीन साहब आप आइए, अब अपना सर्वे करें, प्रीमरी सर्वे जो भी है, डीपीआर बाद में हम देख लेंगे उसमें हमें क्या फायदा है क्या नुकसान आ रहा है। यहाँ पे सर्वे करके नहीं गया, हफ्ता नहीं हुआ, हमारे ले वाले यहाँ से छुपे छुप छुप के चले गए मैनारी में और काम करने के लिए तैयार है और पेपर में दे दिया 2000 megawatt सोलर पावर प्लांट ले में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए ले वालों की बहुत सारी चीजें शोषा है और हम नहीं चाहते ये इस टाइप की शोषा करें। मैं चाहता हूं जो भी हम यहाँ पे करें वो सॉलिड करें। कल इसी हेपेटाइटिस बी में फंड्स की जरूरत है, हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को बुला के इनके साथ मीट करा के किस तरीके से हमें करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, वो आप जैसे बुजुर्गों से मीटिंग्स करा के यकीनन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इनकी तरह हम गौर नहीं करते, हम इनसे बात करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई सोशल बायकॉट नहीं है। और सोशल बायकॉट इस हद तक है एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और बोलते भी नहीं है। इसलिए लेह वाले क्या करते हैं, कश्मीरी क्या करते हैं, जम्मू वाले क्या करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कोशिश कर लेना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने वजूद को मनवाए, न कि किसी दूसरे को दिखा के, तीसरे को दिखा के, चौथे को दिखा के, पांचवें को दिखा के दुनिया को बताए हम कर सकते हैं और ये अमलन हम करके दिखाएं और ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि हर फील्ड में जहां पे भी हैं उस फील्ड में कुछ ऐसा कर जाए जिससे हर कोई आप पे फख्र कर सके। और ये आप पे फख्र नहीं होगा, आपके आने वाली जो नस्ल है, जो यंगर जनरेशन है, उसके अंदर एक उम्मीद होगी। वो सोचेगा हमारे फादर्स अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम हर एक को खुले हम चैलेंज देते हैं। हम अभी गए इसी जोजला के रास्ते को लेकर डिविजनल कमिश्नर से मिले, चीफ इंजीनियर हिमांग को बीकन को ले आया, वहां पे बातें की। हमने कहा ये बाबा आदम से एक डिसीजन हुआ है कि जो जिला में एक्सीडेंट होती है रास्ता हम बंद कर देंगे 15 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को 15 नवंबर को 30 नवंबर को। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा भाई हम इसको खोल के रख देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हमारे यहां पर ही है। मैंने शैलेंद्र जी को कहा और वाकई बेहतरीन आदमी जितनी देर हम इसे खोल के रख सकते हैं। मान लो एक बार स्नो फॉल हुआ, 3 फुट बर्फ गिरा, स्नो को हम क्लियर करेंगे, 10 दिन बंद करेंगे, 10 दिन के बाद स्नो क्लियरेंस होने के बाद फिर खोल देंगे। ये हम कर सकते हैं लेकिन एक रिस्क है और ये रिस्क हमें उठाना है। कोई यहां कोई किसी को गारंटी नहीं दे सकते अभी आप सभी यहां पे जमा हो जाए, खुदा ना करे सीढ़ी से कोई गिर गया, बरंदे से कोई खाना लाते वक्त गिर गया, किसी को ठोकर लगा, गिरा और मर गया, क्या कहेंगे? ये वो बाकिया सुमन बाकिया नहीं आता तो ये नहीं मरता, हाथ पैर नहीं टूटते। चीज यहाँ पर भी ने कहा कर बुलाई, हम खोल के तो रख देंगे, गॉड फॉरबिडिंग समथिंग हैपेंस दिया, अगर कुछ वहां पे हुआ तो कहेगा ये तीन पागल मिलके इन्होंने काम किया, सारे लोग डंडोरा पीटेंगे, आपको तो कुछ नहीं हो क्योंकि आप पॉलिटिशियन है, हमारा तो उसी दिन हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन हमें कहना है भाई हो जाए, वैसे ही मरते हैं लोग। मैंने कहा डोडा में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? मेरे ख्याल में आए हफ्ते डोडा के रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता है कि डोडा के रोड को हम बंद करेंगे, एक्सीडेंट होता है गाड़ियां। सेम यही चीज इसका है, मुझे पता है, आज मैं कह रहा हूं कल हमारे बुजुर्ग कहेगा ये पागल है, फिर डप्पा शिक्षी सच्ची मर ही जाएगा इंसान और कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक प्रेसिडेंट तो बन जाएगा कि हम इस दो जिला रोड को खोल के रख सकते हैं, वैसे भी मरेगा ऐसे भी मरेगा। इसलिए मैं अभी से आपको बता के कहना चाहता हूँ कि कल कोई इंसिडेंट कहेगा ढोल ना पीते, और अगर आप ढोल पीटेंगे भी मैं ये चीजें उठाने के लिए तैयार हूं, मैं कभी इन चीजों को दिमाग में नहीं रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रिस्क हम उठाएं। अगर रिस्क नहीं उठाएंगे कोई नई चीज नहीं आएगा। आज तक दुनिया में जितने भी चीजें इन्वेंट हुई हैं, ये सारे सरफिरों की वजह से है, पागल लोगों की वजह से वजूद में आया है। अगर कैलकुलेशंस करने वाले लोग होते कुछ नहीं होता इस दुनिया में, ये कैमरे नहीं बनता, ये जहाज नहीं बनते, ये स्टेलाइट्स नहीं बनता, ये मोबाइल्स नहीं बनते। कुछ पागल जमा हो जाते हैं, कहते हैं यार चलो एक्सपेरिमेंट करेंगे, सारा प्रॉपर्टी जल जाए तो जल जाए, क्या होगा, मर जाए तो मर जाए। एक्सप्लोर करते हैं और रोड खुलता है। आज मैं आर्मी में गया था 1948 में, जो जिला जब इन्होंने कैप्चर किया है सुखदा हैरान हो जाएंगे, मैंने फोटोज देखे, बड़े बड़े टैंक और बड़ी बड़ी गाड़ियां सोचला क्रॉस करके लाया है। 48 में कोई रोड नहीं था, था? नहीं। मैंने कहा कैसे ले आए? हमने पार्ट्स बना के ले आए। जनरल सिन्हा जो आपके गवर्नर थे उस टाइम वो मेजर था, ये मैंने उस वक्त उससे सुना था जब हमारे करगिल की विजिट पे आया था। कहते सिग्नल में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया और कवर करके ले आए ताकि पाकिस्तानियों को पता न चले, क्योंकि जोजिला में द्रास में पाकिस्तानी बैठे हुए थे। पठानकोट से ले आए जोजिला और जोजिला क्रॉस करके ले आए, किसी को भी पता नहीं चला कितनी बड़ी मशीन आया, लेकिन कुछ सरफिरे थे और उसमें से एक सरफिरा मैंने सुना था हमारे चिकतन का एक आदमी था जिसको बाद में नायक तहसीलदार मिला, क्योंकि उसने मोर्चा प्रोवाइड किया जोजिला क्रॉस करने के लिए। इंडियन आर्मी के पास कंसेप्शन नहीं थी, सर्दी का मौसम था, अभी इस मौसम में 48 में आप बताओ बर्फ हो गया, उसने मोर्चा दिया भाई जोजिला क्रॉस करने के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट है। इससे कुछ सरफिरे जमा हो गए, जोजिला क्रॉस किया और आपके खरुल तक आए। हरका बहादुर जो ब्रिज है वो एक सूबेदार के नाम से है जिसने उस ब्रिज और उस एरिया को कैप्चर किया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यानी दुनिया में जो कुछ भी वजूद में लाया गया है सरफिरों की वजह से आया है, पागलों की वजह से आया है। आप नहीं सोचना मैं आप सबों को पागल बना रहा, मैं पागल नहीं बना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता कुछ कर लो, कुछ रिस्क आप उठाओ। रिस्क नहीं उठाओगे जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ोगे, और ये रिस्क हम में से हर एक को उठाना। बस आखिर में मेरी इस सोसाइटी को अगर आप इस स्टेट में, इस कंट्री में, इस दुनिया में एक मंजिल पे देखना चाहते हो तो हर एक को रिस्क उठाना है। हर एक को आगे बढ़ने के लिए अपना टारगेट फिक्स करके बैठना हो सकता है उस टारगेट में बहुत कुछ आप लॉस कर जाए, बहुत कुछ आपके हाथ से खोए अगर आप घर से नहीं निकलोगे कुछ नहीं होगा। और आखिर में हजरत अली के स्कूल को मैं खत्म करूंगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम बोलते हैं, मैं बिस्तर पे मरने से ज्यादा तरजीह देता हूं तलवार से मरूं। यानी मैं बिस्तर पे मरने से ज्यादा तरजीह देता हूं अमल करते हुए, एक्शन करते हुए, काम करते हुए मैं मरूं। और यही चीज हम सबको करना है। बस खुदा से मेरी दुआ है कि बाकी के जो भी टीम्स हैं वो टीम वैसा ही एफर्ट्स करते रहे, कोशिश करते रहे और इन सबों को हम सभी तावन देते रहे। जिन्होंने सर्विस दी और आज इस नए बॉडी में नहीं है, मुझे उम्मीद है वो दूसरी शक्ल में, वॉलंटियर्स की शक्ल में बेहतरीन तरीके से सर्विस दे देंगे। और बाकी जो मेंबर्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, और बिलखसूस मेरे डॉक्टर हजरात से, सीनियर डॉक्टर हमारे डॉक्टर नज़ीर से लेकर यंग डॉक्टर्स तक जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सबों से मेरी गुजारिश है कि आप इस सोसाइटी के क्रीम हैं, क्योंकि बाकरिया हेल्थ से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है। इस बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो आप डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स जितने भी हैं, डोनर्स जितने भी हैं, ऑर्गेनाइजर्स जितने भी हैं, ये सारे फैसिलिटेटर्स हैं। ये फैसिलिटेशन आपको दे सकता है, ये यहां पे ओपीडी नहीं चला सकते हैं, ये गांव में जाके कैंप नहीं चला सकते हैं, चेकअप नहीं कर सकते हैं, रेफर्स नहीं कर सकते। प्लीज ये सारा चीजें आप लोगों को करना है। और मेरी आपसे गुजारिश है, जो आज यहां पे मौजूद है और जो मौजूद नहीं है उनसे भी मेरी गुजारिश यही है कि आप यही सोचें कि आपकी जितनी भी सर्विस है उस सर्विस में ये भी एक हिस्सा है। बाकरिया में जितनी देर के लिए आप सर्विस देते हैं आपके वजूद से बाकरिया चलेगा, आपके वजूद से यहाँ की लेबोरेटरी चलेगी, यहाँ का क्लिनिक चलेगा, यहाँ जो भी सामान इन्होंने लाया वो चलेगा, ओपीडीज चलेगा, कैंप्स चलेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा एफर्ट्स डॉक्टर हजरात को करेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप आज तक भी बेहतरीन तरीके से खिदमत करते आए हैं, आज के बाद भी हमारे वॉलंटियर्स को, हमारे ऑर्गेनाइजर्स को ये ना लगे कि थोड़ा डॉक्टर साहबान भी कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकालने में आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि आप में से एक आदमी या दो आदमी ने भी आनाकानी की ये ओपीडी नहीं चलेगा। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे शेड्यूल्स बनाए हैं उस शेड्यूल्स के हिसाब से अगर दो डॉक्टर हर संडे को आता हो, वो डॉक्टर अगर नहीं पहुंचा तो अगर यहाँ पे 100 वॉलंटियर्स भी आएंगे वो किसी यूज के नहीं है, किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैन आप है, आपके वजूद से ये बाकरिया चलेगा। इसलिए खुदा रहा थोड़ा सा आप टाइम निकालेंगे, मैं जानता हूं मुश्किल है, लाइफ बहुत बिजी और आपके बहुत बिजी शेड्यूल्स हैं, आपके बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं और यकीन होनी भी चाहिए, लेकिन उन सारे अटैचमेंट्स में से, बिजी शेड्यूल्स में से कुछ वक्त निकालेंगे। और मेरी वॉलंटियर से भी गुजारिश यही है।